प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग पांचवा, लेक्चर नंबर 355। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सौवसामुं, सुर असुर नरपति वंद्यने प्रविनष्ट घाति कर्मणे प्रणमन करूं धर्म करता तीर्थ श्री महावीर ने बड़ी शेष थी शंकर ने सौ सिद्ध शुद्धास्तित्व ने मुनि ज्ञान दुग चारित्र तप वीर चरण संयुक्त ने सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वंदुवै मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौसिद्धने नमस्करण करिये रीते गणधर ने अध्यापको ने सर्व साधु समूह ने तसुशुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करूं साम्यनी जेनाति शिव प्राप्ति बने। आचार्य श्री कुंकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य उक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से पांचवी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 29 पर हम आ गए, 29 नया पैराग्राफ यहाँ से हम पढ़ेंगे। यहाँ तो ज्ञान और दृष्टि दोनों ही एक समय है। ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं और वो तो पूरा द्रव्य गुण पर्याय भेद अभेद सबको जानेगा सामान्य विशेष, और दृष्टि केवल अभेद को स्वीकार करती है। ये बात यहाँ हो रही थी। नए पैराग्राफ से हम प्रारंभ करेंगे। पांचवी पुस्तक है, हाँ हाँ, ये उन्होंने मनीषा बेन ने लिया होगा। हाँ देखो क्या कहते हैं। अरे रे, हमारा हीरा जी महाराज हता बिचारा, चालिया गया। क्या कहा? बिचारा कहते किसको? हीरा जी महाराज तो उनके गुरु थे, तो बिचारा कह रहे क्यों? हाँ, ये बात कभी सुनी नहीं समझी नहीं। ऐसे तो क्रिया में तो चुस्त थे, बहुत चुस्त थे और बिल्कुल भले थे। हाँ, यहाँ लिखे हमारा हीरा जी महाराज हता बिचारा, चला गया, चला गया, नहीं मर गया। हाँ, काने बात पड़ेली नहीं, यानी ये सही बात सत्य बात सुनने को भी नहीं मिली, इतना भी मौका नहीं मिला। ये करता अत्यारे भाग्यशाली जीवो छे, यानी उनसे भी अभी आज के दिन में जीव भाग्यशाली है, क्योंकि ये बात इतनी खुलकर सबके कान में पड़ रही है। लोग विचार करने को प्रवृत्त हो गए। 46 वर्ष की दीक्षा, यानी उनके 46 वर्ष उन्होंने मुनिपना, यानी उनका मुनिपद उनके स्थानकवासी की दीक्षा ली थी। 12 वर्ष की उम्र लीधेली, 12वें साल में दीक्षा ली थी उन्होंने। शांत मानस, गंभीर, 1000-2000 माणस ने अंदर व्याख्यान आपे, अरे रे आ शब्द काने नहीं पड़ेगा। यह बात जो सत्य बात है, जो दिगंबर ग्रंथों में लिखी हुई है, वो सुनने तक को नहीं मिली उनको, ऐसा अवसर नहीं मिला। परनी दया पाड़वी ए अहिंसा अने ए ज्ञानो सार छे, ऐसे उनकी मान्यता थी। हवे आनु शू करूँ कहो। अहीं तो कहे छे के एने सत्य बात क्या है, परनी दया तो पाड़ी शके नहीं, केम के पर छे ही प्रदेश थी पृथक छे। मूल बात यहाँ अपना विषय नहीं छोड़ रहे, अपने विषय से लगते हुए ये सिद्धांत बता रहे कि पर की दया क्यों नहीं पाल सकता, क्योंकि पर में और इसमें तो अत्यंत अभाव है। तो यहाँ तो विषय कौन सा चल रहा है, पृथक्व की बात चल रही थी। प्रदेश थी पृथक छे, प्रदेश थी पृथक छे माटे तेनी दया तो ये पाड़ी सके नहीं। पण एनामा जे दयानो भाव आवे, दया का भाव कहाँ उत्पन्न हुआ, इस जीव के पर्याय में हुआ है, राग है ना वो, तो एनामा जे दयानो भाव आवे ए भाव ने अने द्रव्य ने पण अतद्भाव छे। ये भाव है ने कौन सा भी, ये पर्याय की बात है। रक्षाबेन 2-3 दिन से पूछ रहे ना, गुण में और द्रव्य में तो अतद्भाव है, पर्याय में है कि नहीं, तो बिल्कुल है। जहाँ गुण में है वहाँ तो पर्याय में हो है ही है। तो कहते ए भाव ने अने द्रव्य ने पण अतद्भाव छे, ए एक रूप नथी। तो मेरा ये प्रश्न है बेलो कर जी आपको, द्रव्य और गुण में अतद्भाव बताया,
अतद्भाव बताया
हाँ, भाव यानी उसमें द्रव्य क्षेत्र काल तो एक ही है, भाव भिन्न है। अब द्रव्य और पर्याय में लगा लो, द्रव्य और पर्याय में द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगा लो।
द्रव्य ध्रुव है, पर्याय क्षणिक है,
आप दोनों का द्रव्य एक ही है ऐसा लेना। देखो देखो,
अच्छा हाँ हाँ द्रव्य, हाँ दोनों का द्रव्य एक है,
हाँ
हाँ, क्षेत्र क्षेत्र भी एक है,
हाँ राग का भी,
हाँ
राग का भी क्षेत्र एक है,
राग का भी क्षेत्र एक ही,
हाँ
एक ही
है, पक्का नहीं है,
एक ही है,
हाँ असंख्यात प्रदेश है, इतना लेना है।
हाँ,
वो तो जुड़े प्रदेश है, वो अभी वो बात यहाँ नहीं लेनी, वो अपेक्षित बात है। जितने पर्याय कितने हैं, तो जितना बड़ा द्रव्य उतना बड़ी पर्याय, इतने ही बात, इतने स्थूल रूप,
हाँ राग भी,
हाँ द्रव्य और क्षेत्र दोनों का एक है, हाँ फिर
द्रव्य क्षेत्र
काल,
काल की अपेक्षा से द्रव्य त्रिकाली है, पर्याय क्षणिक,
पर्याय का एक समय है और ये तीन काल,
तीनों काल
यानी अनादि अनंत,
अनादि अनंत,
हाँ भाव तो भिन्न है,
भाव भिन्न है
यानी द्रव्य और पर्याय में भाव की भिन्नता, ये बात चल रही है, ये काल और भाव दोनों द्रव्य और पर्याय में। द्रव्य और गुण में क्या था, द्रव्य क्षेत्र काल तो अभेद और भाव भिन्नता, यहाँ द्रव्य और क्षेत्र से अभेद, क्योंकि पर्याय एक समय की है, पर एक समय के लिए पर वो तादात में है, हमने अनित्य तादात में संबंध है, और गुण के साथ नित्य तादात में संबंध है। ऐसा होने पर भी कथनचित अन्यत्व है, किस अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा, अतद भाव। तो यहाँ बात हो रही है पेज नंबर 29 पर, दूसरे पैराग्राफ में 6-7 लाइन होगी है, वहाँ ये बात हो रही थी कि परनी दया तो पाड़ी सके नहीं, क्यों, तो पर छे ही प्रदेश थी पृथक छे, इसलिए दूसरे द्रव्य में तो इसके कारण कुछ वहाँ इसने दया पाली और वहाँ कुछ कार्य हुआ वो बच गया या जो कुछ है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब कहते प्रदेश थी पृथक छे माटे तेनी दया तो ये पाड़ी सके नहीं, पन दया का भाव उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके दया के भाव के कारण पर में कुछ नहीं होता, वो तो बात सही है, पन दया का भाव इसके पर्याय में हुआ है ना, हाँ तो ये कह रहे एनामा जे दयानो भाव आवे, यानी ये पर्याय है, राग है ना, चारित्र गुण की विभाव है, ए भाव ने अने द्रव्य ने पौन अतद भाव छे, ये बात यहाँ हो रही थी अपनी यहाँ पर, ए एक रूप नथी, अभी पृथक प्रदेश नहीं है, फिर भी एक रूप नहीं है, टोटल अन्यपना है, एनु लक्ष्य पौन छोड़ी ने, अभी करना क्या है जानकर, लक्ष्य छोड़ना है, भिन्नता है अन्य तो जो किस अपेक्षा से वो हमने जान लिए, फिर भी उसका लक्ष्य छोड़ना है। एनु लक्ष्य पण छोड़ी ने गुण ने आत्मा नी दृष्टि करे, पेलो तो विकार हतो, राग ने जाननारु आ ज्ञान छे अने हूँ आत्मा छूं, ए बे वच्चे पण अतद्भाव छे। अतद्भाव ख्याल में आती है, राग तो वो तो विकार है, उसकी तो बात छोड़ो, उसके जानने वाली ज्ञान की पर्याय। यहाँ तो राग से भी मैं जुदा हूँ ये बात यहाँ लेकर बता रहे हैं, वो विकार है, वो भी उसको भी प्रभाव कहा, और उसको जानने वाली ज्ञान की पर्याय तो मेरी है, उसके साथ भी असद्भाव है ये कह रहे। उन्मग्न निमग्न पहला आवी गयू नहीं, पर्याय दृष्टि थी जो ये तो गुण ने गुणी भिन्न छे एम भेद उन्मग्न, उन्मग्न होता है ना ऊपर उठता है, नजरे पड़े यानी ख्याल में आता है, समझ में आता है या दृष्टिगोचर हो जाता है। क्या कहते हैं पर्याय दृष्टि का अर्थ क्या है? आप कहेंगे गुण और गुणी में पर्याय कहाँ से आई? हाँ बोलो, पर्याय दृष्टि बताए ना। हाँ भेद, भेद इटसेल्फ पर्याय है, भेद को पर्याय कहते हैं। नहीं समझे, ये अनंत गुणों का भेद करना ये भी पर्याय दृष्टि होगा, किसी भी अपेक्षा भेद करना उसी को पर्याय कहते हैं। हम तो एक समय के पर्याय को ही पर्याय कहते हैं, इसलिए जब वो बात आई थी उत्पाद भी एक अंश है, ध्रुव भी अंश है और व्यय भी अंश है, तीनों अंश मिलकर तीन पर्याय मिलकर द्रव्य, ऐसी बात आई थी। तो उस पर बार बार वही प्रश्न पूछते थे ना, वो हमारे गोविंद भाई सुनते हैं वो एक निमज से, तो फिर इसको पर्याय क्यों कहा, इसको पर्याय क्यों कहा, वो पर्याय क्यों कहा, क्योंकि तीन जुदे जुदे अंश है इसलिए उसको पर्याय कहा, भेद है, भेद को भी पर्याय कहते हैं, यानी भेद की दृष्टि से देखना वो पर्याय दृष्टि हो गई। भले आप पर्याय एक समय के पर्याय को देखो या गुण के अलग अलग गुणों की बात करो, वो क्या कहलाएगी, पर्याय दृष्टि, द्रव्य दृष्टि ने अखंड अभेद की दृष्टि।
एक तो पर्याय की परिभाषा गुणों के
परिणाम
को पर्याय कहते हैं, दोनों का
पर्याय का अर्थ भेद भी, पर्याय के बहुत अर्थ होते हैं।
अच्छा नहीं, यहाँ यहाँ जो है
ये जो भेद
ध्रुव भी अंश है, द्रव्य गुण भी अंश है, पर्याय अंश,
पर्याय दृष्टि का ना, पर्याय दृष्टि, पर्याय दृष्टि ने भेद की दृष्टि।
अच्छा यहाँ पर्याय का अर्थ
भेद, उसको व्यवहार भी कहेंगे। यहाँ क्या कहते, देखिए पहलो तो विकार हो, तो पहलो ने दया, दया का भाव वो तो विकार था, राग ने जाननारू आ ज्ञान छे अने हूँ आत्मा छूं, ए बे वच्चे पण अतद्भाव छे। पेज नंबर 29 लास्ट पैराग्राफ अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या कहते हैं यहाँ, उन्मग्न और निमग्न की बात पहले आ चुकी थी, पर्याय दृष्टि थी जो ये तो गुण ने गुणी भिन्न छे एम भेद उन्मग्न, उन्मग्न था जरे वो उन्मग्न होना ने ऊपर आ, निमग्न होना अंदर डूब जाने, द्रव्य दृष्टि ये जो ये तो त्या उड़ी जाए, भेद पण उड़ी जाए। क्या कहा, वो भेद उस दृष्टि को वो भेद दिखेगा ही नहीं, भेद है ही नहीं कहेंगे, क्यों, हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं उस दृष्टि को भेद दिखाई देगा तो हम द्रव्य दृष्टि नहीं कहेंगे, द्रव्य दृष्टि ही उसको कहेंगे जिसमें केवल अभेद दिखता है, ये कहना। उन्मग्न निमग्न आवी गई हो तू ने केवी बात, त्या सिद्धांत आ छे के पर्याय दृष्टि थी जोवे तो भेद ऊपर दिखाय छे, यानी जब पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो भेद दिखाई देंगे तो विकल्प आवे, क्योंकि जहाँ भेद का लक्ष्य है वहाँ विकल्प उत्पत्ति होती है। तेने पर्याय थी अवस्थानी अवस्थाना भेद थी देखे के आ राग छे आ मारो छे, त्या तो विकल्प उठे, पण पर्याय दृष्टि छोड़ी ने द्रव्य दृष्टि थी देखे तो निमग्न एटले बुड़ी जाए छे, भेद पण बुड़ी जाए छे। लोग पूछते ना तो पर्याय कहाँ गई, पर्याय है कि नहीं, है कि नहीं, अरे पर्याय को क्यों ढूंढ रहा है, आप अभी किस दृष्टि से देख रहे हैं, द्रव्य दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि को पर्याय दिखेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, वो द्रव्य दृष्टि नहीं रहेगी। हम दो अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं ना, पर्याय दृष्टि से भेद दिखाई देंगे, भेद है, यहाँ द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो उसका विषय अभेद है, वहाँ कोई भेद नहीं दिखेगा। इसलिए कहते
हैं एक प्रश्न की पर्याय उसे पार है भगवान आत्मा पर्याय उसे पार है तो उसमें
पर्याय से आएगी पर्याय से पढ़े द्रव्य दृष्टि के बाद ध्रुव की है ध्रुव जो त्रिकाल है कायम रहने वाला स्वभाव भाव है उसकी बात है यहाँ पर वो पर्याय से पार है। देखो कल भी बात ये दृष्टि और ज्ञान की बहुत चर्चा हुई है इसमें भी हुई है और दूसरे लेक्चर में अमृत प्रवचन में भी हुई। ज्ञान क्या है सामान्य को भी जानेगा विशेष को भी जानेगा अभेद को भी जानेगा भेद को भी जानेगा पर को भी जानेगा ज्ञान का विषय सब कुछ जानने का है। दृष्टि मात्र अभेद अखंड को पकड़ेगी और वो भी स्व भेद उसके विषय में है ही नहीं। ये गौण करने का काम दृष्टि नहीं वो तो यानी दर्शन का गुण जिसको हम द्रव्य दृष्टि कहते हैं उसकी बात नहीं वो तो जो शुद्ध निश्चय नए ने जो बताया ना विषय वो नए तो ज्ञान को कहेंगे दृष्टि तो केवल उसी को पकड़ेगी उसका विषय उतना ही है। वो गौण करने का कार्य ज्ञान कर रहे हैं दृष्टि ने पूरे उसको अखंड स्वीकार लिया। ये गौण करना मुख्य करना वो ज्ञान की बात क्योंकि द्रव्य दृष्टि हुई तभी ज्ञान भी वहीं पर है ना उसको प्रमाण ज्ञान कहते हैं। वो भेद अभेद सबको जैसा है वैसा जानते हैं ये कह रही है बिल्कुल हर समय क्योंकि क्यों चलेंगे दृष्टि कौन सी पर्याय कौन से गुण की पर्याय है और ज्ञान ज्ञान गुण तो दोनों ही कार्य करते हैं ना कब से तभी जब समय दर्शन होता है तो समय दर्शन कहता है कि ज्ञान अरे तू अनादि से काम कर रहा है अभी थोड़ा तो रुक जरा थोड़ा आराम कर मैं एक काम कर लेती हूँ ऐसा होगा क्या नहीं होगा तब क्या हो रहा था श्रद्धा गुण का कार्य क्या हो रहा था विपरीत दृष्टि थी मिथ्या दृष्टि थी अब सम्यक दृष्टि हुई और ज्ञान प्रमाण हाँ पर पहले भी ज्ञान भी उल्टा चल रहा था उसमें भी कुछ दोष था श्रद्धा में भी दोष था परंतु दोनों का कार्य चल रहा था कि नहीं ये लेना है। अभी एक ही समय में सभी गुणों का सम्यक परिणमन शुरू हुआ श्रद्धा तो जो पूरी हो जाती है सम्यक हो जाती है और ज्ञान सम्यक ज्ञान तो हो गया आत्मा का ज्ञान हुआ तो सम्यक ज्ञान हुआ पर परिपूर्ण केवल ज्ञान होने में टाइम लगेगा चारित्र गुण में
ऐसा नहीं होगा ना
ऐसा कभी नहीं होगा उनका ये प्रश्न है दृष्टि सम्यक हुई और ज्ञान अभी मिथ्या रहेगा चारित्र
चारित्र पूर्ण प्रगटता
सम्यक सम्यक है कि नहीं
सम्यक हो
हाँ चारित्र भी सम्यक हुआ है सम्यक चारित्र कहेंगे कि मिथ्या चारित्र कहेंगे अनुभव के साथ चल रही बात
देखो बात ऐसी है श्रीमद जी ने भी बताया है सर्व गुणांस्ते सम्यक्त्व यानी इसका अर्थ ये होता है कि जब जब श्रद्धा गुण सम्यक रूप से परिणमित होता है उसी समय ज्ञान गुण चारित्र गुण और अन्य गुण भी जो विभाव रूप से परिणमित होते थे वो स्वभाव रूप से परिणमित होते हैं। इसलिए उन्होंने बताया सर्व गुणांस्ते सम्यक्त्व यानी सभी गुणों में सम्यक बना आता है और हमको कई लोग ऐसा मानते हैं चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन है सम्यक ज्ञान है चारित्र की बात ही नको बोलते हैं
वो चारित्र नहीं किस अपेक्षा से वो संयम वाला चारित्र नहीं है सम्यक चारित्र है स्वरूपाचरण चारित्र है क्योंकि वो अनंतानुभव अविरत सम्यक है ना वो उसके कोई व्रतादि नहीं है व्रतादि नहीं का अर्थ केवल बाह्य व्रत की बात नहीं है अंतरंग में इतनी स्थिरता नहीं है जिसको स्थिरता को चारित्र नाम देवे ऐसी स्थिरता मुनिराज को होती है तो उसको सकल चारित्र नाम है उसका और चौथे गुणस्थान का नाम क्या है अविरत सम्यक है उसके चारित्र का नाम क्या है स्वरूपाचरण और मिथ्या दृष्टि के चारित्र का नाम क्या है उसके पास चारित्र है कि नहीं मिथ्या चारित्र
देखो हम आपसे पूछते हैं आपका जो कोई फ्लैट है समझो 2 करोड़ का है जास्ती भी होगा मुझे मालूम नहीं है तो आप पैसे वाले हो और जिसके पास 1,00,000 रुपया है वो पैसे वाला है कि नहीं अभी अपने धारावी में झोपड़पट्टी में जाने को मिनिमम 5,00,000 रुपया लेते हैं 5 लाख है तो वो पैसे वाला है ना, यानी अमीर है। मुझे क्या कहना है कि मैं आपके साथ तुलना करें 2 करोड़ के साथ, तो उसके सामने वो 5 लाख
कुछ नहीं कह देंगे, उसके पास है ही नहीं।
अभी पहले के जमाने में 700-800 रुपया पगार मिलना तो हो लगता था, और अभी तो 50,000 भी मिले महीने का तब भी नहीं लगता है कुछ। कहने का तात्पर्य यह है कि जब 6ठे 7वें गुणस्थान का जो चारित्र है, वो जो सकल चारित्र है, उसके तुलना में कंपैरिजन में 4थे का नगण्य है, इसलिए वो है नहीं, ऐसा कहने का प्रघात हो गया है। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा और मिथ्या चारित्र रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये बात समझने जैसी
नहीं, चारित्र नहीं है वो तो कंपैरिजन, रिलेटिव टर्मिनोलॉजी, परंतु सम्यक चारित्र हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग, तो सम्यक शब्द तीनों को लगाए, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और वो 4थे गुणस्थान से शुरुआत होती है, यानी सम्यक चारित्र भी 4थे से शुरुआत हुई, तो उसका नाम है स्वरूपाचरण चारित्र, और स्थिरता बढ़ेगी 5वें गुणस्थान वाले का नाम क्या है, देश चारित्र, एक देश कहो देश चारित्र कहो एक ही बात, और मुनिराजों का है वो सकल चारित्र, इतनी स्थिरता है उनकी, यथा क्या तो ऊपर 11वें से ऊपर हो। हाँ नेहा बेन, उन्होंने पहले बताया नहीं, उन्होंने बताया, उन्होंने यथाक्यत का नाम निकाला था। देखो 29 लास्ट लाइन, देखो पर्याय सेकंड लास्ट, पर्याय दृष्टि छोड़ी ने द्रव्य दृष्टि थी देखे तो निमग्न बुड़ी जाए छे, कौन भेद, वो भेद दिखाई नहीं देता, उस नजर को भेद दिखाई नहीं देगा, अभेदपणु प्रसिद्ध में आवे छे, एने भेद वो नीचे बैठ जाता है, अभेद दिखाई देता है उस दृष्टि को, अभेदपणु एने दृष्टि में आवे छे, आनु नाम धर्म छे, इसको धर्म कहना, और हमने तो धर्म किसी क्रिया में मान लिया है, और ऐसे कोई तत्व ज्ञान की बात आती है तो लगता है अरे इसमें क्या धर्म है, खाली सुनते सुनते आत्मा आत्मा करो और धर्म हो जाएगा, कुछ करेंगे तो होगा ना, ऐसा लगता है, यानी जो करना जो है ना, ज्ञान दर्शन ये पर्याय हो रही है, वो कुछ करना लगता नहीं है, क्यों, क्योंकि शरीर की क्रिया अपनी लगती है और अपनी क्रिया अपनी नहीं लगती है, इसलिए ज्ञान करना ये कुछ किया लगता ही नहीं है। सुबह से क्या क्या किया हमने, तो हमने रोटी बनाई, इतना सब झाड़ू लगाया, ये सब करा, साफ सुफ की इतने, हाँ हाँ, तो ये किया लगता है, परंतु ज्ञान किया ऐसा लगता ही नहीं है। अरे क्या पहुंचू, अमृत रेड़िया छे, पंचम आरामा संतोए तो अमृत रेड़िया छे, समझते हैं ना, ये पंचम काल में संतों ने हमारे जो कुंकुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य और जो संत है वितरागी रेड़िया छे, यानी उन्होंने इसे दिया परोस, पीरसा पीरसना ने परोसना, हाँ हिंदी में परोसना, हाँ, भाव कहवाना आशय में अमृत रेड़िया, यानी जो भाव बता दिया उन्होंने उसमें अमृत ही हमको पिरस दिया। अहिया कहे छे अतद भाव छे छता पृथक प्रदेश नथी, पण अतद भावना भाव में पृथक प्रदेश नथी छता अतद भाव ने जोवानी बे दृष्टि छे, पर्याय दृष्टि थी जोवे तो अतद भाव एवं जुदापणू भासे, અને દ્રવ્ય દૃષ્ટિથી દૂસરી ભાષામાં દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી જોવે તો તે નિમગ્ન થાય છે, એને દ્રવ્યાર્થિક નહીં કેવલ વો અભેદ અખંડ દ્રવ્ય કો વિષય કરતા હૈ તો ઉસમેં વો અતદ ભાવ દિખાઈ નહીં દેતા, તો કહેતે વો અતદ ભાવ નિમગ્ન હો જાતા હૈ, ડૂબ જાતા હૈ, ઉજલ હો જાતા હૈ, પહેલું ઉન્મગ્ન હતું, ઉન્મગ્ન એને દિખાઈ દે રહા હતા, આમાં પર્યાય આદિ નિમગ્ન થઈ જાય છે, દ્રવ્યમાં અભેદ થઈ જાય છે, આવી વ્યાખ્યા છે, તો અભેદ થઈ જાય તો દિખાઈ નહીં દેતી, તો કે પર્યાય કો રખેંગે હમ હિમાલય પર, ઓર દ્રવ્ય કો કહાં રખેંગે કન્યાકુમારી, એસે જુદાઈ હૈ હી નહીં હૈ, જહાં દ્રવ્ય વહીં પર પર્યાય, ઉસ દૃષ્ટિ કો પર્યાય નહીં દિખ રહે, ક્યોંકિ હમ અભેદ કી દૃષ્ટિ સે હી દ્રવ્ય કો દેખ રહે, ये एक महत्व की बात,
ये उन्मग्न और निमग्न की बात एक बार फिर से पहले से बताएंगे तो अच्छा लगेगा। भूल गए ना हम
ये दो नदियों के भी नाम याद है आपको, उन्मग्न और निमग्न नदी कहाँ होती है? विजयार्ध पर्वत में गुफा है, वो खंड प्रपात नाम की गुफा है जिसमें से गंगा नदी बहकर आती है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उसके अंदर वो गुफा में दो और नदियां गंगा को मिलती है, एक का नाम है उन्मग्ना, एक का है निमग्ना। वो चक्रवर्ती अपनी सेना लेकर जाता है वो गुफा में से, तो कहते हैं तो उन्मग्ना ऐसी नदी है उसमें कुछ भी अंदर डाल कितनी भी भारी चीज तो ऐसे ऊपर उठते और बाहर फेंकी जाती है, और निमग्ना ऐसी कितनी भी लाइट भी चीज कागज जैसे कागज भी क्यों ना वो तो बिल्कुल अंदर डूब जाते, ऐसे दो नदियां है वहां पर। वो तो वहां से कैसे जाते वो बहुत शास्त्र में उसका वर्णन आता है। तो उन्मग्न होना है उठकर उभरना जिसको हम कहते हैं, और निमग्न होना रे अंदर जिसको तो आविर्भाव होना यानी उन्मग्न, तिरोभाव होना निमग्न, उसके अनेक शब्द आते हैं अलग अलग, यानी जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं उस दृष्टि से वो चीज दिखाई देती है।
जब सम्यक दर्शन होता है तब निमग्न हो जाता
उस दृष्टि को नहीं दिखती, उस दृष्टि को द्रव्य दृष्टि को वो भेद नहीं दिखाई देगा, पर उस समय ज्ञान है कि नहीं है तो वो तो जानेगा नहीं, तो समय दर्शन हुआ पता कैसे चला? अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ है तो पर्याय में हुआ, तो पर्याय को जाना कि नहीं जाना, तो पर्याय है कि नहीं है? तो निमग्न हुई किसके लिए? वो द्रव्य दृष्टि के लिए। एक ज्ञान और दर्शन का घोटाला मत करना। आए क्या? आए देखो आगे देखते हैं, पेज नंबर 30 दूसरा पैराग्राफ। तेमने तद्भाव नो अभाव छे, अतद्भाव है उसका अर्थ क्या? तद्भाव का अभाव है। तेवी रीते कोई ना आश्रय रहती ए पाछू झीणू आव्यू। सत्ता जे छे ए द्रव्य ने आश्रय रहे छे, क्योंकि गुण है वो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। द्रव्य छे कोई ने आश्रय रहतु नथी। अभी द्रव्य और गुण इनमें डिफरेंस क्या है उसकी बात हो रही है। द्रव्य किसी के आश्रय से नहीं है और गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। छे तेवी रीते कोई ने आश्रय रहती, अभी नंबर डालो इसको, एक नंबर है कोई ने आश्रय रहती वो नंबर एक। एक किसका वर्णन चल रहा है? सत्ता का यानी गुण का। गुण किसी के आश्रय, किसी के यानी किसके? द्रव्य के आश्रय। तो कोई ने आश्रय रहती अर्थात द्रव्य ने आश्रय रहती निर्गुण, ये सत्ता का यानी गुण का दूसरा विशेषण होता है। गुण कैसे होते हैं? निर्गुण होते हैं। ये कहीं लिखा है क्या बेलोकर जी? कहाँ लिखा है? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, गुणों की बात बताई। गुण कैसे है कि द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, वो स्वयं निर्गुण है। निर्गुण है उनके आश्रय से कोई गुण नहीं रहते, वो अन्यमति निर्गुण मानते वो निर्गुण की बात नहीं है। सुना है कि नहीं कभी? वो सगुण निर्गुण मानते हैं, परमात्मा हुआ तो निर्गुण हो गया मानते हैं।
मेरा ये प्रश्न है, गुण के साथ अन्य गुण उसके आश्रय से रहे तो क्या होगा?
वो गुण द्रव्य हो जाए। अच्छा आप
क्या नाम है? दक्षाबेन उत्तर देना।
इन्होंने प्रश्न पूछा,
गुण तो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और गुण के आश्रय से कोई नहीं रहता है, तो अगर अन्य गुण एक गुण के आश्रय से रहेंगे तो क्या होगा? आपने एक बात सुन के रखी है, वो बर्फ सब जगह लगाती है। हाँ नेहा में ना बताएंगे,
गुण द्रव्य रूप हो जाएगा।
हाँ यानी नया द्रव्य तैयार होगा और वो होगा कि नहीं? क्यों नहीं? अपन देखो अस्तित्व गुण क्या बताता है? द्रव्य का कभी नाश नहीं होगा और द्रव्य कभी उत्पन्न भी नहीं होगा, यानी कोई नई उत्पत्ति होगी नहीं। और हमने ऐसा माना कि गुण के आश्रय से अन्य गुण रहे तो नया द्रव्य होगा, तो
एक नहीं
अनंत केवल ज्ञानी की बात खोटी ठहरेगी। देखो हम थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं तो इतना बड़ा पाप लगता है, इसलिए सत्य बात समझने की कोशिश करना हमेशा। गुण की परिभाषा क्या है?
द्रव्य की परिभाषा बोलो।
द्रव्य की परिभाषा,
द्रव्य की परिभाषा मनीषा बोलो। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। एक गुण के आश्रय से अनेक गुण रहेंगे तो गुणों का समूह होगा, तो उसको हमको द्रव्य कहना पड़ेगा। ध्यान में आई नहीं बात?
इसके लिए लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका सुनना पड़ेगा। ऐसे प्राइमरी बातों पे आपको भरोसा नहीं है?
क्लियर है ना? बिल्कुल पक्के। देखो अभी आगे बढ़ेंगे। हमने दूसरा पॉइंट कौन सा देखा? निर्गुण। गुण निर्गुण होते हैं, अर्थात गुण निर्गुण है ना, वो स्वयं गुण से रहित है। देखो अर्थात गुण मा गुण नथी, वो उसका लक्षण है। आपने तत्वार सूत्र तो पढ़ा है, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, ये सूत्र है। वो क्या बताता है कि गुणों की परिभाषा क्या है, जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और स्वयं गुण रहित है, यानी अन्य गुण उनके आश्रय से नहीं रहते, ये इसका अर्थ होता है। अर्थात गुण मा गुण नथी, वो गुण एक ही अकेला है, उसके आश्रय से और अन्य गुण नहीं हो रहे। आहा द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा तत्वार्थ सूत्रनु सूत्र छे। द्रव्य ने आश्रय गुण छे, पण निर्गुणा गुणा गुण ने आश्रय गुण नहीं, भारे अक्रू का। ख्याल में आती ना बात, ऐसे क्यों बताए? अजी एना पेलाखा आकरा एनो प्रयोग अने अनुभव तो अलौकिक वातु छे। यानी पहले पहले इसको सही रूप से जानना पड़ेगा। पलाखा ने उसके अनेक जो पहलू जो है, अलग अलग एंगल्स, उसको अच्छी तरह से ज्ञान में निर्णय होगा, तभी जाके दृष्टि अपने स्वभाव को पकड़ेगा, तभी दृष्टि द्रव्य दृष्टि होगी। कल ही बात आई थी, उसके बिना तीन काल में नहीं होगी। ज्ञान में जहां तक विपरीतता पड़े, कोई संशय है, तब तक द्रव्य दृष्टि उत्पन्न। आप कितने भी ध्यान करने की कोशिश करो, कहीं पर भी सीखो, कुछ भी करो, अनुभव होने से रहा होगा ही नहीं। देखो यहाँ क्या कहते हैं, निर्गुण शुं कीधु, मूल शास्त्र में नीचे अर्थ आप्यो छे। निर्गुण एटले गुण विनानी सत्ता निर्गुण छे, वो स्वयं गुण है, पण उसके आश्रय से अन्य गुण नहीं है। ये कहे द्रव्य गुणवाड़ू छे। देखो हम हमेशा जो एक गुण का रूप दूसरे गुण में, ऐसी बातें आती है। तो ज्ञान, ज्ञान का अस्तित्व है कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं है, तो ज्ञान में अस्तित्व गुण है, अस्तित्व गुण मानेंगे वो द्रव्य हो जाएगा। मैंने क्या पूछा, ज्ञान गुण में अस्तित्व गुण है क्या, उसका अंश है क्या? नहीं, उसका रूप है। प्रत्येक गुण में अन्य गुणों का रूप है, अन्य गुण मानेंगे तो एक द्रव्य हो जाएगा, अन्य गुण का अंश मानेंगे तो भी वो द्रव्य हो गया, इसलिए अंश नहीं है। अस्तित्व गुण का रूप ज्ञान में है, क्योंकि सारे गुण द्रव्य के आश्रय से, जहां ज्ञान गुण द्रव्य के आश्रय से, वहीं पर अस्तित्व गुण भी द्रव्य के आश्रय से, यानी द्रव्य के आश्रय से अनंत गुण है। तो द्रव्य तो एक एंटिटी है, तो उसमें सभी गुणों का आपस में रूप आता है, एक में उसको रूप कहते हैं, उसको निमित्त कहते हैं, अन्य अन्य बातें आती है। जैसे 47 शक्तियों में तो उसके 21 पॉइंट्स बताए अलग अलग। यहाँ क्या कहते हैं देखो,
एक मिनट, ये विषय को लगता हुआ बात।
हाँ, विषय की बात है।
ऐसा है कि एक गुण में दूसरे गुण का रूप है, एक गुण में 10 गुण का रूप है, एक गुण में अनंत गुण का रूप है, और एक गुण जो है उसका रूप अनंत गुणों में है, और अनंत गुणों का रूप एक गुण में है। ऐसी अटपटी बातें हैं। कल आया था ना आत्मानु वैभव,
हाँ,
वैभव छे,
जैसे आत्मा ज्ञानमय है तो आत्मा कहने से अनंत गुण है, तो अस्तित्व भी है ना उसका, तो अस्तित्व गुण ज्ञानमय है कि जड़ है? आत्मा का अस्तित्व गुण, आत्मा का अस्तित्व गुण ज्ञानमय ही है ना, उसके सारे ही गुण ज्ञानमय, इस तरह से लेना। और जड़ का अस्तित्व जड़ है, देखो निर्गुण उसका अर्थ लिया है, देखो मूल शास्त्र में नीचे अर्थ आप निर्गुण एटले गुण विनानी सत्ता निर्गुण छे, द्रव्य गुण वालू छे, समझ में आती है बात? अस्तित्व गुण सत्ता है ना, अस्तित्व गुण उसकी बात चल रही है अपनी दो चार घंटे लेक्चर से, यही बात हो रही है, सत्ता और द्रव्य इसकी बात हो रही है ना, कि तद्भाव का अभाव है, यानी अतद्भाव जो हो। सत्ता निर्गुण छे, द्रव्य गुणवाड़ू छे, जेम केरी वर्ण गुणवाड़ी गंध गुणवाड़ी स्पर्श गुणवाड़ी वगैरह छे, परंतु वर्ण गुण कहीं गंध गुणवाड़ो स्पर्श गुणवाड़ो के अन्य कोई गुणवाड़ो नहीं। हाँ, अन्य गुणों का रूप उसमें कह देंगे, जहाँ वर्ण है वहाँ स्पर्श वो है ही है, परंतु उनका दो गुणों का आपस में अविनाभाव संबंध होते, जहाँ एक है पुद्गल का एक गुण है, वहाँ पुद्गल के अन्य अनंत गुण है और है, ऐसा नहीं कि किसी को वर्ण है और स्पर्श है ही नहीं। हाँ, वो बात आपके इंद्रिय ज्ञान के द्वारा आप पकड़ सकते हैं नहीं सकते, वो बात अलग है, परंतु उसमें तो होगा ही होगा। हाँ, कारण के वर्ण कहीं सुंघातो के स्पर्शातो नहीं, यानी उसका वर्ण, हाँ वर्ण है उसका कोई स्मेल नहीं है, वर्ण है वो वर्ण हल्का भारी नहीं होता है। हाँ, और ये जेम आत्मा ज्ञान गुण वालो वीर्य गुण वालो वगैरह छे, परंतु ज्ञान गुण का ही वीर्य गुण वालो नहीं, समझ रही? ये जो अभी हमने बात देखी, आहा हा, ज्ञान गुण ते ज्ञान गुण छे, वीर्य गुण नहीं, अन्य कोई गुण वालो नहीं, तेम द्रव्य अनंत गुणों वालू छे, परंतु सत्ता गुणवाणी नहीं, यानी सत्ता के आश्रय से और अन्य गुण नहीं रहते, बस इतना बताना अहीं, यानी यहाँ पर जेम दंडी दंड वालो छे, तेम द्रव्य ने गुण वालू न समझू। क्या कहा? कल उदाहरण दिया था, कल थे ना आपके, नहीं थे?
कल था।
अनात्मभूत लक्षण बताया था, याद है? क्या भूल गया? नाम तो याद
है,
कुछ है। अच्छा कुछ बताया था यहाँ, क्या है? दंड,
हाँ
हाँ, दंडी, दंडी का अर्थ क्या है? दंडी जिसने दंड लकड़ी धारण की वो दंडी कहेंगे, उसके हाथ में लकड़ी है वो लाठी है, तो उसको हम लाठी वाला कहेंगे, ऐसे द्रव्य गुण वाला कहते हैं, ऐसा है क्या?
नहीं।
हाँ, क्योंकि वो जो जुदे जुदे, जुदे है, जैसे किसी को टोपी वाला कहा, किसी को चश्मा वाला कहा, तो उसका अर्थ क्या है? चश्मा जुदा है, वो व्यक्ति जुदी है, ऐसा द्रव्य जुदा और गुण जुदे है क्या? तो कि बिल्कुल नहीं है, ऐसा वहां नहीं है। यहाँ गुण वाला तो कह दिया, द्रव्य को गुण वाला कहा, परंतु कोई ऐसा नहीं मान दे कि वो अनात्म भूत ऐसे कोई उससे जुदी,
तो
गुणमय है, गुण वाला शब्द से वो ऐसा डिफरेंट नहीं समझना। फिर से यहाँ क्या लिखा?
यानी आपको कहना है कि जो गाड़ी वाला है वो गाड़ी उसकी नहीं है, पैसा वाला है वो पैसा उसका नहीं है।
गुरुदेव की भाषा में कितना वाड़ा हो गया, बढ़ गया छू, नारू नारू पैरासाइट नहीं मालूम, इतना लंबा वो कीड़ा निकलता ना वर्म पैर में से पानी में, उसके वाड़ा कहते हैं। आप क्या, आपको क्या, आप क्या कहते हैं?
वो उसको वाड़ो बोलते हैं, वो पता है, लेकिन ये वाड़ा समझ
में, ये कहते हैं पैसा वाड़ा, हाँ घर वाड़ा, तो गुरुदेव कहते हैं कितने केटला वाड़ा बढ़ गया छे, यानी उसके साथ उसकी कंपेयर की नहीं।
दोनों अलग अलग
देखो, ये भाषा का प्रयोग है, ये भाषा का ये जैसे वो उसी गुजराती में ही ये समझ रहा है उसका ये नारू और उसको बाड़ा ऐसा नहीं होगा उसका अर्थ नहीं होगा वो भाषा में बाड़ा बाड़ा कहते उसको तो ये पैसा वाला घर वाला बाइडी वाला छोकरा वाला कैसा वाड़ा वाड़ा कितने वाड़े हो गए उसके ये कहते बढ़ गया ये उसको चिपके हुए ये विशिष्ट भाषा में जो पर्टिकुलर शब्द आता है ना वही वहाँ लागू होता है अन्य भाषा में ट्रांसलेट करके वो नहीं आएगी
पैर में एक वाड़ो हो गया
हाँ।
तो इतना दर्द होता है इतनी तकलीफ होती है तो हमने तो इतने वाड़ो
इकट्ठे कर दिए
तो कितनी तकलीफ
वो दर्द है वो ख्याल में नहीं आ रहा है महान दुखी अनंत दुखी है क्योंकि अपने को इतने वाले वो समझ लेगा पैसा वाला बाइडी वाला छोकरा वाला घर वाला
हुकमचंद जी भारिल बोलते हैं आप कौन है मैं अग्रवाल हूँ ये कौन है सबरवाल है ये कौन है कोई दूसरा वाल है
खंडेल
तो ये कितने तो वाल खड़े कर दिए
वाल 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 वेद किए ना ईशु कीधु देखो ब्रैकेट में क्या लिखा था अहीं जेम दंडी दंड वालो छे तेम द्रव्य ने गुण वालो न समझो यानी गुण और द्रव्य की पृथक सत्ता तो है ही नहीं है ईशु कीधु लाकड़ी वालो दंडी करते क्या है लकड़ी वाला अने लाकड़ी ई बे तद्दन जुदी चीज है बिल्कुल जुदी जुदी चीजें है एम अहीं न समझो यानी द्रव्य कोई अलग बात है और उसके गुण कहीं दूसरी सत्ता है ऐसा नहीं समझना ये तो पृथक प्रदेश छे किसमें दंड और दंडी में एम अहिया गुण अने गुण वच्चे न समझो पृथक प्रदेश तो है ही नहीं है वो 105 नंबर की गाथा में बताया था पण फक्त गुण ते द्रव्य नहीं अने द्रव्य ते गुण नहीं एटलो अतद्भाव छे અન્યપણા કિસ અપેક્ષા છે અતદભાવ કી અપેક્ષા જેમ દંડી દંડવાળો છે તેમ દ્રવ્યને ગુણવાળું ન સમજવું એને ઉસકે જૈસા યે વાલા નહીં હે હા કારણ કે દંડી અને દંડને તો પ્રદેશ ભેદ છે દ્રવ્યને ગુણ તો અભિન્ન પ્રદેશ છે ગુણવાળા કહી શકતે પણ તો વૈસા વાલા માલા નહીં લગાના ઉસમે वो गुण मय कह सकते अनंत गुणों का अखंड अभेद पिंड कह सकते उसको मुमुक्षु कहते हैं भाव अन्य छे पन क्षेत्र अन्य नथी गुरुदेव श्री कहते हैं क्षेत्र ही छे एक छे उतना ही नहीं वही है उतना ही क्षेत्र कहेंगे कि जीव के भी असंख्यात प्रदेश है और धर्म द्रव्य का भी है वही क्षेत्र है आप कहेंगे दो जीवों के वो भी असंख्यात प्रदेश ही समान है परंतु जीव इसकी सत्ता जुदी उसकी सत्ता जुदी जिस द्रव्य की बात करते हैं उसकी सत्ता उससे अभिन्न है प्रदेश वही है क्षेत्र वही है कहते क्षेत्र ही छे एक छे गुण ने द्रव्य नु क्षेत्र एक छे हम देखें गुण और द्रव्य का द्रव्य एक क्षेत्र एक काल एक हाँ पर्याय छे ए वड़ी पछी बात आप कहेंगे पर्याय में अभी आप आने के पहले पर्याय के साथ भी अतद्भाव लगा दिया था वो भी राग के पर्याय और उसको जानने वाली ज्ञान के पर्याय के साथ अत्यारे ही बात नहीं यहाँ का विषय यहाँ चलेगा अभी तो गुण ने द्रव्य बच्चे नी बात छे सभी बातें बताएंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप सभी की बातें होगी आहा हा अनेकांत मार्ग वस्तु ना स्वरूप मां छे ए रीते छे वो अनेकांत ये शब्द कैसे तैयार हुआ एटले अनेक अंत अंत एने धर्म अंत का अर्थ है धर्म अनेक अंत एटले धर्म एमा छे ई रीते अनेकांत छे एमा नथी अने बीजी रीते अनेकांत ठरावू के परनु पण करी शके ए तो एनामा छे नहीं ये अनेकांत नहीं है कि स्व का भी करा और पर का भी करता है उसको अनेकांत नहीं कहते ये कह रहे एनामा छे नहीं त्याकी एने अनेकांत केम लागू पड़े आगे कहते आत्मा में ये सत्ता नाम नो गुण है ये निर्गुण है। गुण क्या है वस्तु, इन्हें गुण का स्वरूप बता रहे हैं। पहले क्या बताया था, द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और वो स्वयं निर्गुण है। ये दो बातें अभी तक बताई। देखो निर्गुण है एटले के एमा गुण नथी, पोते गुण छे पण एमा बीजो गुण नथी। समझ में आई ना दर्शाबेन बात क्या कह रहे। इन्हें सत्ता नाम का गुण है स्वयं, जिसको हम अस्तित्व गुण कहते हैं, वो स्वयं गुण है पर उसके आश्रय से और अन्य गुण नहीं रहते। एक गुणनी बनेली छे, सत्ता क्या है एक गुण से बने हुई है। ये तीसरा पॉइंट, पहला कोई ने आश्रय रहती, दूसरा पॉइंट निर्गुण एक गुण से बनी हुई है, वो सत्ता वो एक गुण है, एक गुणनी बनेली छे। सत्ता एकज गुणनी बनेली छे, विशेषण छे, विशेषण एटले खासियत लक्षण, भेदक धर्म भेद धर्म छे, खास भेद धर्म छे। सत्ता ने अने आत्मा ने खास जुदा प्रकार छे एम कहे छे। अब यहाँ सत्ता को विशेषण कहेंगे और द्रव्य को विशेष्य कहेंगे। द्रव्य के लिए भी छह पॉइंट बताने वाले यहाँ तो। हाँ ये तो पहला पॉइंट कौन सा हुआ, द्रव्य के आश्रय, दूसरा पॉइंट निर्गुण, तीसरा पॉइंट एक गुण से बने हुए, चौथा पॉइंट विशेषण। ये चार नंबर डालो उसको। विशेषण है वो तो लक्षण है, ये गुण को लक्षण कहेंगे तो द्रव्य को उसका लक्ष्य कहेंगे, है ना। जैसे ज्ञान को लक्षण कहा तो द्रव्य वो तो आत्मा का वो लक्षण हुआ, इसलिए हम विशेषण का, विशेषण लक्षण के अर्थ में विशेषण बताए। देखो ये गुण क्या बातें होती है, तो द्रव्य के विशेषण ही तो है। जैसे हमने आपको पूछा ये राजा का वर्णन करो, राजा कैसा है, हमने पराक्रमी है, हाँ शूरवीर है, बहुत दयालु है, ये क्या हुए राजा के विशेषण हुए। विशेषण में उसके गुण बताए हमने, तो ये द्रव्य के गुण क्या है, वो द्रव्य जानता भी है, ज्ञान गुण है उसमें, द्रव्य की सत्ता है वो सत्ता गुण है उसमें, ये सारे विशेषण है लक्षण है, ये उसकी खासियत है विशेषताएं हैं। अन्वय अलग है, अन्वय ने तो वही का वही रहना, कंटिन्यूटी रहना, वो अन्वय होता है। द्रव्य को भी अन्वय कहते हैं। यहाँ द्रव्य और गुण में क्या डिफरेंस है उसकी बात है। गुण ये विशेषण है और द्रव्य को विशेष्य कहेंगे। हाँ वो बात में द्रव्य के छह पॉइंट्स अलग आएंगे, इस छह पॉइंट के साथ उसकी कंपैरिजन करके बताएंगे हम। देखो सत्ता ने अने आत्मा ने खास जुदा प्रकार छे एम कहे छे, विधायक छे, ये पांचवा पॉइंट। ये सत्ता ये क्या है, विधायक ने रचनारी छे, गुण छे द्रव्य ने रचनार छे, द्रव्य छे गुण ने रचनार नथी, छे विधान करनार रचनार, गुण छे ए द्रव्य ने बतावे छे एटले एनो रचनार छे, द्रव्य एने रचनार छे गुण रचनार नथी, गुण द्रव्य ने रचनार नथी। अभी तो रचनार बता रहे, ये क्या उल्टा सुलटा हुआ। छे विधान करनार रचनार, विधायक रचनारी, अने वृत्ति स्वरूप, ये छ नंबर पॉइंट वृत्ति स्वरूप। वृत्ति स्वरूप एटले वर्तवू हयाति। देखो हम जीव के लिए क्या कहेंगे, जीव अनादि से जी रहा है, और बाकी द्रव्यों के लिए क्या कहेंगे, पुद्गल अनादि से जी रहा है, ऐसा कहेंगे है, तो उसको कहेंगे वर्त रहा है, तो उसको कहेंगे वृत्ति, कहा वृत्ति स्वरूप। सत्ता जो है वो क्या बताती है, हयाति बताती है, तो ये स्वयं वृत्ति स्वरूप है। देखो वृत्ति स्वरूप एटले वर्तव, हयाति उत्पाद वे द्रव्य, एवी जे सत्ता छे, आटला बोल विशेषण ना कर्या, सत्ता गुण निर्गुण छे, एक गुणनी बनेली छे, विशेषण छे एटले के ए द्रव्यनु विशेषण छे, क्योंकि उसके कारण ही द्रव्य को सत कहने में आता है।
सत्ता गुण निर्गुण छे, एक गुण
सत्ता यानी अस्तित्व गुण, छह पॉइंट आ गए ना इसमें। हाँ, अने विधायक छे, रचनारी छे, अने वृत्ति स्वरूप छे, छे ने वृत्ति स्वरूप एटले वर्तन। एने सत्ता के कारण द्रव्य हमेशा है तो द्रव्य वर्त रहा है। ये शब्द पहले भी ये वर्तनारी ऐसे शब्द आया था पहले। अब कि एवी जे सत्ता छे, ये सत्ता का वर्णन किया कैसा है, द्रव्य के आश्रय से रहती है, स्वयं निर्गुण है और उसके एक गुण से बनी हुई है, विशेषण है, विधायक है और वृत्ति स्वरूप है। ये छह पॉइंट्स बताए। अभी द्रव्य के भी ऐसे ही छह पॉइंट्स इसके साथ कंपेरेटिवली बताएंगे। इसलिए गुण है वो द्रव्य ने ऐसे बाद में सिद्ध करेंगे। एवी जे सत्ता छे ते, अभी जो सत्ता है वह द्रव्य नहीं है बताने वाले। अब द्रव्य के छह पॉइंट यहां बता रहे हैं। तो कहते कोई ना आश्रय बिना रहतु, ये नंबर एक। वहां नंबर एक पर क्या था, कोई ने आश्रय रहे थे, कोई ने द्रव्य ने आश्रय रहे। अब द्रव्य किसी के आश्रय से नहीं है, इसलिए पॉइंट नंबर एक हुआ। हवे द्रव्य केवू छे तो कोई ना आश्रय बिना रहतु। पहला गुण ने बात करी, आहा सत्ता नाम नो गुण छे ते निर्गुण छे, अर्थात गुण में गुण नथी, ए गुण ने बनेली छे, विशेषण छे, विधायक एटले रचनारी छे, वृत्ति स्वरूप एवी सत्ता छे। बस त्या ए बात पूरी थई। ते कोई ना आश्रय विना रहतु, अभी द्रव्य की बात है। द्रव्य द्रव्य केवू छे के कोई ना आश्रय विना रहतु द्रव्य छे। अब क्या है, गुण वाळू छे। वहां क्या कहा था, निर्गुण है। ये नंबर दो, गुण वाळू। पहली सत्ता निर्गुण हती, एक गुण निर्गुण हतो, एमा बीजो गुण न हतो। आ द्रव्य तो गुण वाळू छे क्योंकि इसमें तो अनंत गुण का वो तो समूह है, हाँ, पिंड है, अनेक गुणों नू बनेलू। ये अनादि थी अनेक गुण नू बनेलू रचेलू छे। बनेलू ने कभी नहीं था और बन गया ऐसा नहीं अर्थ लेना, अनादि से है ही है, परंतु अनंत गुणों का समूह रूप ही है। अब रुकना पड़ेगा, बड़ा पैराग्राफ है ये। द्रव्य के छह पॉइंट्स कल देखेंगे हम, फिर दोबारा रिपीट करके आगे बढ़ेंगे, यहीं रुकेंगे। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। बेलो कर
नमो अरिंताण नमो सिद्धाण नमो आयाम नमो अध्यायाण नमो लोय सोसाम। नमो अरिंताण नमो सिद्धाण नमो आयाम नमो अध्यायाण नमो लोय सोसाम। नमो अरिंताण।